महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 7। ओम नमः सिद्धेत्य, ओम नमः सिद्धेत्य, ओम नमः सिद्धेत्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सर्वसाहूणम्, भूतबले प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवलविख्यातं महाबंधं नमाम्यहम्।
आचार्य श्री भुदवली भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें अभी हम तृतीय अनुभाग बंध अधिकार देख रहे हैं और चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 26 पर हम आ गए, 26। अभी ये इसके जो अलग अलग अनुयोग द्वार है उसमें से 13वां अनुयोग द्वार जो काल प्ररूपना है, यहाँ एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट का या जघन्य अजघन्य का लगातार काल कितना है उसकी बात यहाँ चल रही है। तो कल हमने ओग में देख लिया था कि 4 घाती कर्मों का जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध है वो उसका जघन्य काल एक समय, एक समय के लिए उत्कृष्ट होकर फिर अनुत्कृष्ट हो सकता है, अधिक से अधिक 2 समय तक ही उत्कृष्ट रह सकता है। स्थिति में हमने एक समय से अंतर्मूर्त देखा था, याद होगा आपको, तो यहाँ तो 1 या 2 समय तक है। और फिर अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि उत्कृष्ट किया अनुत्कृष्ट एक समय के लिए फिर उत्कृष्ट किया, वैसे स्थिति में भी एक समय के लिए अनुत्कृष्ट नहीं होता था, अंतर्मूर्त तक तो अंतर पड़ता था। तो अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बराबर है, क्योंकि उत्कृष्ट करने वाले कौन है, संगी पंचेंद्री वगैरह वो सारी कंडीशंस लगा देना उसमें, वो जो एक इंद्रियादि में चला जाए असंगी में तो अनंत काल वहाँ घूमेगा, तो उसको उत्कृष्ट नहीं होगा तो लगातार अनुत्कृष्ट होता रहेगा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध ओघ में हम देख रहे थे, क्षपक में है, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, एक ही समय के लिए है वो, इसलिए एक समय बताया। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल 3 प्रकार का है, अनादि अनंत, यानी कभी उत्कृष्ट करेगा नहीं, उसका अर्थ क्या है, कभी क्षपक श्रेणी चढ़ेगा नहीं, अभव्यों में अनादि अनंत होगा। अनादि शांत, भव्यों में होगा अनादि शांत, सादि शांत भी हो सकता है, क्योंकि 11वें गुणस्थान में बंध नहीं था, 10वें में आने पर बंध शुरू हुआ और जो शुरू हुआ वो अनुत्कृष्ट ही था तो सादि हो गया। अब उसको शांत कैसे होगा, तो दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो बंध रुकेगा तो शांत हो जाएगा, या एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है फिर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक भटक कर फिर क्षपक श्रेणी चढ़ के उसका अंत होगा तो भी वो साधि शांत होगा, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होगा। यहाँ लिखते हैं,
हाँ आपने जैसे बताया कि उपशम श्रेणी जीव चढ़ा, हाँ, वहाँ गोत्र कर्म आदि बंधन बंद हो गया, अनुत्कृष्ट फिर नीचे आया वो,
हाँ,
और उत्कृष्ट कर सकते हैं ना वो, क्या अनुत्कृष्ट की
अनुत्कृष्ट का लगातार काल कितना होगा?
अच्छा,
उत्कृष्ट कब करेगा, क्षपक श्रेणी के अंत में करेगा, बीच में कभी उत्कृष्ट होगा ही नहीं उसका, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट क्षपक श्रेणी के अंत में होगा बस, अदरवाइज वो अनुत्कृष्ट है। पर अनुत्कृष्ट का भी शादी किस अपेक्षा से, 11वें गुणस्थान से नीचे आया तो शादी होगा उस अपेक्षा से।
अदरवाइज अनादि से तो अनुत्पुष्ट ही कर रहा था वो। तो कहते जो साधि शांत काल है, मिला ना ऊपर से, उसका यह निर्देश है। निर्देशन एक कथन ऐसा है, जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। फिर से आएगा जाने, ये वायर खींची नहीं है। हाँ, आयु कर्म का पढ़ रहे थे हम। उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त। क्योंकि आयु का लगातार बंध अंतर्मूर्त तक होता है, वो उत्कृष्ट करेगा ही कोई जरूरत नहीं है, तो अनुत्कृष्ट ही होता रहेगा। इसी प्रकार आयु कर्म का अनाहार मार्गणा, मार्गणा का नाम आहार मार्गणा है, उसमें भी आहारकों में ही बात घटित होगी। आहार मार्गणा तक काल जानना चाहिए। आहार मार्गणा, मार्गणा का नाम है आहार मार्गणा, और उसमें आहारक जीवों में हम कहेंगे। उन्होंने लिखते में अनाहारगति लिखा है, परंतु यानी अनाहारकों तक, यानी सभी मार्गणों ने इतना ही बताना था उनको। इसी प्रकार ओग के समय ने आयु का उन्होंने सभी मार्गणों में बता दिया, और बाकी ओग के समान अन्य घाती या अघाती जो उसमें कैसे होता है, ओग के समान मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी, क्योंकि उत्कृष्ट बंध करने वाले तो मिथ्या दृष्टि है, तो इनमें भी ये बात घटित होगी। कौन सी? उत्कृष्ट का काल और अनुत्कृष्ट का काल। असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि भव्य जीवों में अनादि अनंत विकल्प नहीं होता। आप कहेंगे ओग में तो वेदिनी नाम गोत्र का जो उत्कृष्ट है उसका एक समय बताया है, और वो कहाँ होता है? शपक में होता है। तो यहाँ कैसे घटित करेंगे मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी में? हाँ, उस मार्गणा में कब होगा? तो संयम के सन्मुख वाले को होगा, तो भी अंतिम समय में होगा, करण लब्धि के अंतिम समय में। इसलिए उसका भी ऐसा ही घटित होगा कि उत्कृष्ट का काल एक समय है और अनुत्कृष्ट का अनादि अनंत साधि अनादि शांत साधि शांत सभी विकल्प उसमें घटित हो जाएंगे। ख्याल में यही बात है, असंयतों में भी ऐसा ही समझना है। असंयतों में वेदी नाम गोत्र का उत्कृष्ट का स्वामी कौन होगा? तो चौथे से सातवें में जाने वाला जी। और चक्षुदर्शन भव्य तो ओक के समान सब घटित होता है ना, स्वामी की अपेक्षा हमको समझ कर उसकी बात देखनी है यहाँ पर। परंतु कथन काल का ऐसा ही होगा और उसका प्रमाण यही होगा। अब विशेषार्थ पढ़ते हैं। चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणामों से होता है। हमको ये बात देखनी है कि इसमें उत्कृष्ट प्रशस्त का हो रहा है अप्रशस्त का हो रहा है। तो घाती कर्मों की सभी प्रकृतियां तो अप्रशस्त ही है, तो यह उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणामों से होता है। इनका जघन्य काल एक समय, इनका यानी उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। इसलिए चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। जो जीव इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके एक समय के लिए अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है और पुनः उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने लगता है, उसके इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का एक समय काल उपलब्ध होता है। ये समझ में आई बात? स्थिति में तो अंतर्मूर्त तो अनुत्कृष्ट होगा ही होगा, ऐसा था। तथा जो अनंत काल तक एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक पर्यायों में परिभ्रमण करता रहता है, उसके इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का अनंत काल उपलब्ध होता है। यानी वो जो संगी में जाएगा तभी उत्कृष्ट कर सकता है, बाकी तो अनंत काल तक अनुत्कृष्ट करता रहेगा। अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनंत काल कहा है, यानी वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन समझना। वेदनीय नाम और गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में अपने अपने बंध काल के अंतिम समय में होता है, यानी सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय है। तथा इसके पहले नियम से अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है, उसमें भी जो भव्य होते हैं उनके इस उत्कृष्ट की अपेक्षा सदा अनुत्कृष्ट। सॉरी, मैं भयंकर कहा क्या मैंने? हाँ, देखो देखो, उसमें भी जो अभव्य होते हैं उनके इस उत्कृष्ट की अपेक्षा। कौन सा उत्कृष्ट है? अभव्यों के लिए उत्कृष्ट नहीं, वो उत्कृष्ट। यानी वो की जब बात करें तो अनादि अनंत विकल्प अभव्यों की अपेक्षा है, पर अभव्य मार्गणा में जब देखेंगे तो उनका उत्कृष्ट तो उनके स्वरूप विशुद्ध में होगा। ख्याल में आई बात? ओग में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ओग की अपेक्षा जो उत्कृष्ट कहा है वहां अभव्यों के लिए वो अनादि अनंत विकल्प बन जाएगा। तो कहते उनमें भी जो अभव्य होते हैं उनके इस उत्कृष्ट की अपेक्षा। ये इस उत्कृष्ट कहा ना, ये पर्टिकुलर उत्कृष्ट कब होता है? वो सूक्ष्म सांप्रदाय में उसकी अपेक्षा सदा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता रहता है और भव्यों के उपशांतम होने के पूर्व तक अनादिकाल से अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है। उपशांत मोह में बंद ही नहीं होता है, इसलिए वो वहां रुक गया, इसलिए वहां शांत कहेंगे। किंतु उपशम श्रेणी पर आरोहण करने के बाद वह साधि हो जाता है, यानी ग्यारहवें से फिर दसवें में आया तो बंध शुरू हुआ, पर बंध शुरू हुआ तो क्षपक में जो उत्कृष्ट है उसकी अपेक्षा सो यहाँ तो अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा। जैसे स्थिति यहाँ डबल होती थी परंतु अनुभाग यहाँ कम होगा। जो जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक ये जो शादी हुआ ना, वो शादी हुआ उसका अंत कब होगा? वो कितने काल तक तो रहेगा वो बंध जो अनुत्कृष्ट बंध है? जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक। ये किसकी बात है? अनुत्कृष्ट की। जो का अर्थ है ये अनुत्कृष्ट, ये अनुत्कृष्ट जघन्य से अंतर्मूर्त काल तक। क्यों? दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ेगा, फिर ग्यारहवें में जाएगा तो बंध मिट जाएगा, इसलिए अंतर्मूर्त काल तक अनुत्कृष्ट रहा। और उत्कृष्ट रूप से कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक होता रहता है, यानी एक बार उपशम श्रेणी उतरा, चढ़ के उतरा तो शादी हो गया, और फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भटक कर अंत में क्षपक श्रेणी चढ़ा और दसवें में गया तो उत्कृष्ट किया, तो अनुत्कृष्ट का एंड हो गया। फिर दोबारा उपशम श्रेणी नहीं चढ़ाने, क्योंकि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में से काल कम हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष जाने का वो काल है वो एग्जैक्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन। उसके पहले पहले क्षपक श्रेणी के अंत में लेना, बाद में अंतर्मूर्त में उसने तेरवा पार किया, बारवा तेरवा इस तरह से ले लेना है। यही कारण है इन तीन कर्मों के, कौन से? वेदनीय नाम और गोत्र, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध के अनादि अनंत। किसको होगा अनादि अनंत? अभव्यों को, अनादि शांत ये भव्यों के, यानी या तो अनादि शांत कैसे होगा, या तो उपशम श्रेणी चढ़ा या क्षपक श्रेणी चढ़ा, और सादी शांत यानी एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और फिर दोबारा उपशम या क्षपक श्रेणी चढ़ा तो शांत हो जाता है। ये तीन विकल्प बतला कर सादी शांत की अपेक्षा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध काल जघन्य काल अंतर्मुख काल की बात है यहाँ पर, और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध सर्व विशुद्ध परिणामों से होता है। अब सर्व विशुद्ध कहने से तत्प्रायोग्य ये समझना, यानी देवायु का बंध होगा अप्रमत्त वाले को, और इसका जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय है। देवायु का बंध अप्रमत्त गुणस्थान वाले कर रहे उत्कृष्ट अनुभाग के साथ, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। आयु कर्म का निरंतर बंध अंतर्मुक्त काल तक ही होता है, यही कारण है कि इसके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त कहा है। अब वो अप्रमत्त वाले देवायु को छोड़कर, या उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं अनुत्कृष्ट ही किया, या अन्य कोई भी जीव आयु बांध रहा है तो वो अनुत्कृष्ट करता रहेगा अंतर्मुक्त तक। इसलिए उसका अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय, एक समय कैसे होगा, दो उत्कृष्ट के बीच में अनुत्कृष्ट किया, यानी इनका उत्कृष्ट कभी भी हो सकता है। यहाँ मत्य ज्ञानी आदि कुछ अन्य मार्गणाए ओणा करना मार्ग गा हो गया मार्गणाए परिगणित की गई है, यानी ओघ के समान उन्होंने बताया था मत्य ज्ञानी श्रुत ज्ञानी असंयत अचक्षुदर्शनी भव्य और मिथ्या दृष्टि, जिनमें ओघ प्ररूपणा के अनुसार काल घटित हो जाता है, स्वामित्व नहीं घटित होता पर काल वैसा ही घटित होता है। इसलिए उनमें सब कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओघ के समान कहा है। यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि ओघ प्ररूपणा में यहाँ स्वामित्व का निर्देश करके जिस प्रकार काल घटित करके बतलाया है, उसी प्रकार इन सब मार्गणाओं में अलग अलग स्वामित्व का विचार कर उक्त काल घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कैसे है उसको उन्होंने घटित किया था, और यहाँ पर भी हमको ये घटित करना है। जैसे हमने देखा था मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी असंयत के लिए तो संयम के सन्मुख वाले को लिया था, मिथ्या दृष्टि को भी संयम के सन्मुख वाले को कहेंगे हम, वो वेदी नाम गोत्र के उत्कृष्ट के लिए। इसलिए कहते उसका स्वामी अलग है, उसका सोच कर उसको घटित कर लेना चाहिए। मात्र भव्य मार्गणा में ओघ प्ररूपणा प्र प्र लिखना ओघ हाँ ओघ प्ररूपणा के स्वामित्व से कोई अंतर नहीं है, यानी भव्य मार्गणा में वैसे ही वो ही स्वामित्व है। चार घाती कर्मों का मिथ्या दृष्टि है संकलेश वाला, वेदिनीय नाम गोत्र का क्षपक है अंतिम समय में, केवल इस मार्गणा में वेदिनीय नाम और गोत्र कर्म का अनादि अनंत विकल्प नहीं बनता, क्योंकि भव्य है नियम से मोक्ष जाने वाले है तो उसका तो अनादि शांत हो जाता है अनुत्कृष्ट। अनादि शांत और सादी शांत दो ही विकल्प उनमें बनेंगे। यहां तक समझ में आई ना, ये तो ओग और उसका विशेष अर्थ हमने देखा। अब हमको मार्गणाओं में घटित करना है, हाँ पहले में पहले गति मार्गणा। नारकियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। देखो देखो वेदिनी नाम गोत्र का भी कहाँ होगा उसका उत्कृष्ट, नारकियों में याद है वेदिनी नाम गोत्र का विशुद्धि में उत्कृष्ट होगा, तो विशुद्धि किसके ज्यादा होगी, सम्य दृष्टि की। तो चौथे गुणस्थान में जो विशुद्ध है उसमें दो समय तक लगातार अनुभाग बंध हो सकता है। आप क्षपक श्रेणी या अंजाम करण परिणाम होते हैं वहां एक समय कर देते हैं, उत्कृष्ट के दो समय नहीं लेते, उग में हमने उत्कृष्ट के दो समय नहीं लिए थे, किसके? वेदिनी नाम गोत्र के। यहाँ घाती कर्म को तो लिया ही लिया, वेदिनी नाम गोत्र को भी। स्वामी तो अलग अलग है, परंतु काल जो है एक समय या दो समय वो यहाँ पर भी घटित होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि एक समय के लिए बीच में उसने अनुत्कृष्ट किया। और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल 33 सागर है, क्योंकि उसने कभी उत्कृष्ट किया ही नहीं बंध, लगातार अनुत्कृष्ट ही करता रहा। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में अपनी अपनी स्थिति को जानकर काल ले आना चाहिए। यानी सामान्य से नारके में 33 सागर कहेंगे, अलग अलग पृथ्वी की बात करना है तो पहले नरक में कितना कहेंगे? एक सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, हाँ, चौथे में 10 सागर, पांचवे में 17 सागर, छठे में 22 और वो 33 सागर। तो अपना अपना काल जानकर लेना है, अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल है वो। अब तिर्यंचों में सात कर्मों का उत्कृष्ट भंग सामान्य नारकियों के समान है, किंतु अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का। अभी तिर्यंच कहने से वो सारे असंगी जीव सारे एक जैसे सारे तिर्यंच ही है, इसलिए अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट अनंत काल है, यानी ओ के समान घटित होता है अनुत्कृष्ट का। इसी प्रकार अभोग्य और असंगी जीवों के जानना चाहिए। वेदिनी नाम गोत्र का तो हम कहेंगे पांचवे के सन्मुख वाला जीव लेना है ना, कैसे लेना? स्वामित्व में वेदिनी नाम गोत्र का स्वामी, तिर्यंचों में जगन्य नियम को उत्कृष्ट देखना है, तिर्यंचों में मैं ऑलरेडी उसके सन्मुख वाला नहीं, संयता संयत ही लेना है, डायरेक्ट संयता संयत लेना, ये सन्मुख वाला नहीं लेना। मैंने सर्व विशुद्ध संयता संयत जैसे नारकियों में कौन से देखा था हमने? सर्व विशुद्ध चौथे गुणस्थान वाला देखा, दो समय लिए थे, ऐसे सर्व विशुद्ध संहिता संयत लेना। मैंने तीन अघाती का सर्व विशुद्ध संहिता संयत, उसके भी एक समय से दो समय हो गए। किंतु अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अनंत काल है। अब इसमें वेदिनी नाम गोत्र में अनुत्कृष्ट में अर्ध पुद्गल परावर्तन लेना पड़ेगा, क्या कहते? यानी देखो देखो घाती कर्मों के लिए तो पंचेंद्रिय से एक इंद्रिय में गया, और वेदिनी नाम कर्मों के नाम गोत्र के उत्कृष्ट के लिए वो पंचम गुण स्थान वर्ती सर्व विशुद्ध है। देखो मैंने यहाँ से निकाला, उसके स्वामित्व देखा था, पेज नंबर 8 पर देख ले। तिर्यंचों में जहाँ लिखा है ना, तीसरी लाइन नीचे का पैराग्राफ, पेज नंबर 8 मिला आपको? वेदिनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध युक्त उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर संयता संयत तिर्यंच। अभी उत्कृष्ट इसके होगा तो अनुत्कृष्ट किसको होगा? तो बाकी जीवों को अनुत्कृष्ट है, तो अनुत्कृष्ट का सादी शांत काल जब हमको देखना है तो तो वही लेना पड़े, एक बार उत्कृष्ट करने के बाद अनुत्कृष्ट हुआ है उसको। अरविंद भाई क्या कहते हैं, ये जो अनंत काल बताया है वो चार घाती के लिए असंख्यात पुद्गल परावर्तन, वो भी अनंत काल है। और वेदिनी नाम गोत्र के लिए इन्हें तीन अघाती के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन, वो भी अनंत काल है। इन्होंने ऐसा कुछ खोलकर बताया नहीं है। इसी प्रकार अभव्य और असंगी जीवों के जानना चाहिए। अभव्यों में तो ठीक है कि चार घाती का तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक एक इंद्रिय में गया, तो उसका अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल हुआ इतना बड़ा। असंगी में उत्कृष्ट बंध कौन करेगा, सात कर्मों का या कहो या तीन का, तो पंचेंद्रिय करेगा, असंगी पंचेंद्रिय करेगा, उसमें भी वो अनंत काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन का घटित होता है। पर मेरा कहना था कि सामान्य तीर्यंचों में तीन अघाती के लिए अर्धपुद्गल ही लेना पड़ेगा ना। तीर्यंच रहा ना वो अर्धपुद्गल परावर्तन तक, असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक तीर्यंच रह सकता है। इन्हें पंचम गुणस्थान वर्ती तीर्यंच ने उत्कृष्ट किया था, फिर वहां से वो मिथ्यात्व तो में गया, अर्धपुद्गल परावर्तन रहा, अनुत्कृष्ट ही बंद किया, और बाद में उत्कृष्ट कब कहेंगे, फिर संयता संयत हुआ तब। हाँ लास्ट वन यानी अनुत्कृष्ट का एक समय और अर्धपुद्गल परावर्तन होगा। ये सामान्य तीर्यंचों में बात अलग होगी, अभव्य और असंगी में तो बस एक इंद्रिय में गया वो, तो अनंत काल उस वहां बिताया। पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में क्या कहते, देखो पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल सामान्य तीर्यंचों के समान है, यानी एक समय से दो समय तो होता है सर्वत्र। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, यानी दो उत्कृष्ट के बीच में एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया, तो अनुत्कृष्ट का जघन्य काल एक समय हुआ, और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, क्योंकि उसके मार्ग नहीं बदल गए एक का। हाँ 95 पूर्व कोटि और तीन पल्य, क्योंकि पहले भव ने उसने उत्कृष्ट करने के बाद अनुत्कृष्ट किया था, और लगातार वो तीर्यंच में रहा, पर अंत तक तो उसने अनुत्कृष्ट ही किया, तो उसके मार्ग ना पलट गए। तो 95 पूर्व कोटि और तीन पल्ले, ये कैसे आए समझ में, 96 भव करना है उसके। जब हम पंचेंद्र तीर्यंच कहते तो संगी असंगी दोनों आ गए, और हर एक में स्त्री वेद के आठ, पुरुष वेद के आठ, नपुसक वेद के आठ, फिर अपर्याप्त भव, और फिर आठ आठ आठ, ये संगी के 48 और असंगी के 48। तो उसमें से लास्ट में संगी का तीन पल्ले वाला एक भव रखना। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त को में आठों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। अभी चार घाती में तो संकलेश में लेना, तीन अघाती में तो विशुद्धि में लेना, आयु तो जो आयु बनती है तभी लेना उसको। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, दो उत्कृष्ट के बीच, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वो एक जीव इन मार्गणाओं में रहेगा तो अंतर्मूर्त काल तक रहता है, तो इसलिए अंतर्मूर्त, उसने लगातार अनुत्कृष्ट ही किया। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, क्योंकि उसका काल ही अंतर्मूर्त है, इसी मार्गणा ली, सब सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि सूक्ष्म जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म में लगातार रहने का काल कितना है मालूम है? भूल गए? असंख्यात लोग अकेले अपर्याप्त में अंतर्मूर्त, अकेले सूक्ष्म पर्याप्त में अंतर्मूर्त, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त बदले तो भी सूक्ष्म में रहने का लगातार काल, सूक्ष्म एकेंद्रीय कहो या सूक्ष्म कायिक कोई कहो, असंख्यात लोक प्रमाण। तो दोनों मिलाकर लेंगे तो अकेले पर्याप्त में रहने का काल अंतर्मूर्त, अकेले अपर्याप्त में रहने का काल अंतर्मूर्त, इसलिए उनको सभी अपर्याप्त लिए लिए सब सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। सूक्ष्म नहीं लिखा, क्योंकि सूक्ष्म लिखते तो अनंत का ये सारे असंख्यात लोक प्रमाण काल हो जाता था। यह इसी मार्गना ली कि जिनका मार्गना का काल ही अंतर्मूर्त है, सब अपर्याप्त कहने से एकेंद्रीय बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त लेना सूक्ष्म, परंतु सूक्ष्म में पर्याप्त जीव भी अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहते। मनुष्य त्रिक में आगे बढ़ेंगे ना, मनुष्य त्रिक में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओग के समान है, यानी जगन्य कहो उत्कृष्ट कहो एक ही समय है, क्योंकि शपक में होता है अंत में, और शेष भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। पंचेंद्रिय तिर्यंच में क्या कहा कि उत्कृष्ट काल एक समय या दो समय, शेष भंग सॉरी उत्कृष्ट तो बता दिया, अनुत्कृष्ट का भंग यानी वेदिनी नाम गोत्र का अनुत्कृष्ट का एक समय से लेकर पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्ल, परंतु यहाँ पूर्व कोटि का हाँ प्रमाण है 47 पूर्व कोटि। मनुष्य नहीं में अलग कहेंगे, सामान्य में 47 पूर्व कोटि होगा, मनुष्य पर्याप्त में 15 पूर्व कोटि होगे, और मनुष्यनी में 7 पूर्व कोटि, और हरेक के आगे तीन पल्ले जोड़ देना। शेष भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। शेष में एक्चुअली उन्होंने चार घाती का क्यों नहीं लिया है? तो अच्छा अच्छा सातों कर्मों का लिया, सातों कर्मों का अनुत्कृष्ट एक साथ लिया उन्होंने, ख्याल में आई बात नहीं? देखो शेष भंग में क्या क्या लेना है, शेष भंग में चार घाती का उत्कृष्ट एक से दो समय, ये शेष में आता है, और सातों कर्मों का अनुत्कृष्ट, और आयु का भी जैसे घटित होता वैसे। और सात कर्मों का अनुत्कृष्ट के लिए ये बाकी सब, वो पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले, इसलिए शेष भंग में सबको लिया। देवों में जैसे नारकियों में देखा था हमने, सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल नारकियों के समान है, यानी सातों कर्मों का उत्कृष्ट का एक समय और दो समय, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 33 सागर है, जिसे नारकियों में भी देखा था हमने। यहाँ 33 सागर सर्वार सिद्धि में लेना, इसी प्रकार सब देवों के अपने अपने स्थिति प्रमाण अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल जानना चाहिए, यानी जहाँ की जितनी स्थिति है उसको वहां ले लेना है। एक इंद्रियों में, अब इंद्रिय मार्गणा में देखेंगे सात कर्मों के। अभी एक इंद्रिय में हमको स्वामी देखना है कि उत्कृष्ट करने वाला कौन है, तो बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव होगा, तो वो छोड़कर अगर एक इंद्रिय में भटकने का काल हमको देखना पड़ेगा। सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, दो उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। अब ये कैसे लिखेंगे, जो बादर एक इंद्रिय जो सूक्ष्म एक इंद्रिय में गया और लगातार वही भटका, तो असंख्यात लोक प्रमाण काल तक वहां रखा, इसलिए अनुत्कृष्ट का काल कितना हुआ, असंख्यात लोक। ख्याल में आती बात है, क्योंकि हमको स्वामी ख्याल में लेंगे तो ये क्यों लिखा है ख्याल में आ जाती बात। इसी प्रकार सब सूक्ष्म जीवों के काल एकेंद्रीय योग के समान है, यानी सूक्ष्म जीवों का भी ऐसा ही होगा। एकेंद्रियों में हमने वो सूक्ष्म में भेजा इसलिए असंख्यात लोक हुआ था, पर सूक्ष्म जीवों में रहने का ही काल असंख्यात लोक है, तो लगातार उसने अनुत्कृष्ट ही किया, उत्कृष्ट किया ही नहीं, ऐसा जीव गया। परंतु ये बात ख्याल में आई, जैसे एकेंद्रिय के अपेक्षा सब जीवों का काल एकेंद्रिय योग के समान है, यानी असंख्यात लोक काल तक उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, परंतु एकेंद्रिय में रहते हुए ऐसा नहीं होगा। एकेंद्रिय में रहने का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, परंतु उस सभी इतना बड़ा काल उसने अनुत्कृष्ट ही किया ऐसा कभी नहीं होगा। असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद वो जरूर उत्कृष्ट करेगा ही करेगा। फिर दोबारा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और निगोज जीवों में काल ओघ के समान है। ये सामान्य से पृथ्वी का एक, जल का एक वगैरह, वायु का एक में लगातार रहने का काल असंख्यात लोक असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, परंतु अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक ही लिया उन्होंने वहां पर भी, यानी उसका अर्थ वो सूक्ष्म में रहो या नहीं रहो इतने काल के बाद लौटकर वो जरूर नियम से उत्कृष्ट करेगा ही। एकेंद्रिय का ओग के समान है, ओग में अनंत काल बता, अच्छा पर ओग है ना, एकेंद्रिय का ओग लेना पड़ेगा ना, क्योंकि पृथ्वी का एक में रहने का काल अनंत काल तो है ही नहीं है। एकेंद्रिय के ओग, एकेंद्रिय ओग के समान है। ऊपर भी लिखा है सव सुहमाणम ओघम, ओघ है ना वो, तो एकेंद्रिय ओग के समान है। बादर एकेंद्रियों में सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है, जो असंख्याता सही असंख्यता हुआ असंख्याता संख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी के बराबर है। यानी बादर एकेंद्रिय में रहा अपन, तेने उसके उत्कृष्ट किया ही नहीं, परंतु एकेंद्रिय में रहने का काल अनंत होने पर भी असंख्यात लोग बात वो जरूर नहीं नहीं, मगर ऊपर हमने क्या केवल सूक्ष्म का काल देखा, पर सूक्ष्म में वो जाए नहीं जाए, सूक्ष्म में से बाहर आए, परंतु सूक्ष्म में से मान लेते इच्छात बहुत सूक्ष्म का करके अंतर्मूर्त में वापस भी आया, तो असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद वो उत्कृष्ट करेगा ही, उसका अर्थ होता है। यानी एकेंद्रिय में रहने का काल अनंत है, ये यहाँ बराबर है, पर सामान्य से एक इंद्रिय में वहां रहने का काल अनंत काल था, असंख्यात पुद्गल परावर्तन था, वहां असंख्यात लोक काल के बाद उत्कृष्ट करेगा ही। असंख्यात लोक के बाद उत्कृष्ट करेगा ही। क्योंकि निगोद में भी देखो ना, निगोद ढाई पुद्गल परावर्तन का काल है अकेले निगोद में रहने का, फिर भी असंख्यात लोक काल के बाद वो उत्कृष्ट करेगा, ऐसे यहाँ समझना। लगातार बादर एक इंद्रिय में रहता है तो लगातार अनुत्कृष्ट ही किया तो उसका काल अंगुल का असंख्यात भाग हो जाता है। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त को में सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। यानी हरेक की जो वहाँ की काय स्थिति जो है उसको लेना है, यानी सूक्ष्म जीवों की काय स्थिति असंख्यात लोक थी, बादर एक इंद्रिय की अंगुल का संख्यात अभाव, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त संख्यात हजार वर्ष। इसी प्रकार बादर पृथ्वी का एक, देखो सामान्य से पृथ्वी का एक लिए थे तो उसका तो असंख्यात लोक में तो लौट कर फिर दोबारा होगा ही होगा, और उसकी काय स्थिति भी असंख्यात लोक थी। अब यहाँ बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और निगोद, इनके पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। यहाँ बादर निगोद चाहिए, बादर शब्द वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और निगोद, ये बादर निगोद को ही समझना चाहिए। जो बादर एक इंद्रिय पर्याप्त कहा वही बादर, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त और बादर निगोद पर्याप्त, इसमें कितना उनका काल है संख्यात हजार वर्ष। अब बादर पृथ्वी का एक केवल बादर लिया, उसमें पर्याप्त शब्द नहीं लिया है, बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक, बादर वनस्पति का एक, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और बादर निगोद जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है। वो तो एक समय दो समय, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण। बादर कायिकों को अलग से लेते हैं, पर्याप्त का भेद नहीं किया, पर्याप्त कहेंगे तो संख्यात हजार वर्ष होते और ये कर्म स्थितियां ने सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर। इतनी विशेषता है कि बादर वनस्पति का एक जीवों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यहाँ क्या लिखा, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर और बादर निगोद अलग अलग करेंगे तो, और अकेले बादर वनस्पति का एक लेंगे तो अंगुल का, जैसे बादर एक इंद्रियों में लिया था, बादर एक इंद्रियों में अंगुल का असंख्यात भाग था, वैसे बादर वनस्पति का एक में लेना, यानी उसमें प्रत्येक और साधारण दोनों आ गए। तो सामान्य एक इंद्रिय बादर के समान उसका हो जाता है। प्रत्येक प्लस निगोद, बादर प्रत्येक प्लस निगोद। अब इसी का विशेष आप देखते हैं। यद्यपि एक इंद्रियों का सामान्य उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अनंत काल है, पर यह काल सब अवांतर भेदों में परिभ्रमण करने की अपेक्षा से कहा है। सात कर्मों का निरंतर अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध सूक्ष्म एकेंद्रिय के होता है। बादर एकेंद्रिय हो जाने पर पर्याप्त दशा में उसके उत्कृष्ट अनुभाग होना संभव है, होता ही ऐसा नहीं, संभव है। इसी से यहाँ पर एकेंद्रीय के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रीय की उत्कृष्ट काय स्थिति उक्त प्रमाण है। एकेंद्रीय सूक्ष्म और पांचों स्थावर कायिक सूक्ष्म जीवों की यही काय स्थिति होने से इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल भी यही कहा है। केवल पांच स्थावर का एक सूक्ष्म है, पांच स्थावर का एक इन जनरल भी कहेंगे तो भी असंख्यात लोक ही होगा। पांचों स्थावर का एक और निगोद जीवों में भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि पृथ्वी आदि चार की काय स्थिति असंख्यात लोक प्रमाण तो है ही, वनस्पति का एक और निगोद जीवों की काय स्थिति भिन्न है। कितनी है तो वनस्पति का एक की तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और इसकी अकेले निगोद की ढाई पुद्गल परावर्तन। पर इनमें भी सूक्ष्म जीवन की अपेक्षा सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल ओघ एकेंद्रियो के समान ही प्राप्त होता है, इसलिए इनमें भी एकेंद्रिय ओघवत काल कहा है। बादर एकेंद्रियों की उत्कृष्ट काय स्थिति अंगुल के असंख्यात पे भाग प्रमाण है, इसलिए इनमें सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उक्त प्रमाण काल कहा है, यानी उसने उत्कृष्ट बंध किया ही नहीं ऐसा जीव लेना है। इसी प्रकार आगे भी जिनकी जो काय स्थिति कही है उसका विचार कर सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल जान लेना चाहिए। कोई विशेषता न होने से यहाँ उसका अलग से निर्देश नहीं किया, शेष कथन सुगम है। क्योंकि अभी कायिकों की बात हमने देखी थी, पर बादर एकेंद्रियों में अंगुल का संख्यात भाग है, बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में संख्यात हजार है, अकेले बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, वगैरह वगैरह है, उनके भी पर्याप्तों में ऐसा ही है संख्यात हजार वर्ष। बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में भी हमने देखा था संज्ञा पद, तो कायिकों के भी जो पर्याप्त जीव है उसमें भी ऐसा ही लेना। बादर पृथ्वी काय के इन जनरल ले लेंगे हाँ, तो वो तो कर्म स्थिति है, बादर कायिकों में कर्म स्थिति है, संख्या कह जाए तो बादर पर्याप्तों में, और बादर वनस्पति का एक इन जनरल लेंगे तो बादर एकेंद्रिय के समान वो हो जाता है अंगुल का संख्या प्रभाव। तो ये हमने विशेषार्थ भी देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। 29 पृष्ठ पर आए हम। द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और उनके पर्याप्त जीवों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल नारकियों के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। उनकी काय स्थिति अपनी अपनी। पंचेंद्रिय द्विक और त्रसद्विक जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है, एक या दो समय। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, दो उत्कृष्ट के बीच में, और उत्कृष्ट काल क्रम से पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर पंचेंद्रिय के लिए और पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर त्रस के लिए। पंचेंद्रिय कहने से उसमें संगी असंगी पर्याप्त अपर्याप्त सब आ गए। और त्रस कहने से इन जनरल पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए। पंचेंद्रिय की काय स्थिति है, पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 1000 सागर और त्रसों की पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 2000 सागर, किंतु पर्याप्त को में यानी पंचेंद्रिय पर्याप्त और त्रस पर्याप्त की बात, 100 सागर पृथक तो पंचेंद्रिय पर्याप्तों में और 2000 सागर एग्जैक्ट त्रस के पर्याप्तों में। वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओग के समान है, क्योंकि इसमें तो क्षपक श्रेणी है तो एक समय घटित होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, दो बार उपशम श्रेणी के बीच में, और उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान है यानी काय स्थिति से कुछ कम। क्योंकि पहले भाव में श्रेणी चढ़ के उतरा है और फिर दो बार उपशम श्रेणी में ही उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान लेना है। अभी ज्ञानावरण में क्या था, उसमें तो कोई श्रेणी की बात नहीं थी, वो मिथ्या दृष्टि करता है और फिर उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं ऐसा जीव लिया। और वेदी नाम गोत्र में एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और बाद में अंत में जाके फिर क्षपक श्रेणी चढ़ा है, तो कुछ कम काय स्थिति ले लेना इसकी। यानी वैसे ही पंचेंद्रियों में पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 1000 सागर और त्रसों में इन जनरल पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 2000 सागर, पंचेंद्रिय पर्याप्तों में 100 सागर पृथक तो और त्रस पर्याप्तकों में 2000 सागर। विशेषण, पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 1000 सागर, पंचेंद्रिय पर्याप्तकों की 100 सागर पृथक्त्व, त्रस काय की पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 2000 सागर और त्रस काय पर्याप्तकों की 2000 सागर है। इसी से यहाँ इनमें चार घाती कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। इनमें वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का, त्रस कहो या पंचेंद्रिय कहो, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध क्षपक श्रेणी में होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट काल ऊग के समान है यानी एक समय है, शेष कथन सुगम है। नीचे का पैराग्राफ 29 पेज पर हमने एक इंद्रिय की बात देखी, फिर द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय की देखी, पंचेंद्रिय द्विक और त्रस द्विक की भी बात देखी। केवल कहाँ किसकी काय स्थिति कितनी वो हमको पता होना चाहिए। द्विंद्रियाधिक में तो संख्यात हजार वर्ष देखा था, पंचेंद्रियों की इन जनरल पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 1000 सागर और त्रस इन जनरल पूर्व कोटि पृथक तो अधिक 2000 सागर देखा। उसके बाद हमने पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में 100 सागर पृथक और त्रस पर्याप्तकों में 2000 सागर देखा। इस तरह से वेदिनी नाम गोत्र तो क्षपक में होता है, तो एक समय के लिए उत्कृष्ट जघन्य या अजघन्य या उत्कृष्ट काल उसका एक समय ही होगा। अनुत्कृष्ट के लिए दो बार उपशम श्रेणी से उतारना है या चढ़कर उतारना है, तो मिनिमम अंतर्मूर्त और मैक्सिमम कुछ कम अपनी काय स्थिति जो अभी हमने देखी। अब नीचे का पैराग्राफ देखेंगे, पांच मनोयोगी और पांच वचन योगी जीवों में एक जीव की अपेक्षा इनका काल लगातार जो है अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगा। सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओग के समान है, यानी यहाँ तो एक ही ओग के समान है, चार घाती का तो एक या दो समय। और वेदनीय नाम गोत्र दिन अघाती का एक समय होगा क्योंकि क्षपक श्रेणी पॉसिबल है। आयु का तो एक या दो समय उत्कृष्ट होता है। अब अनुत्कृष्ट की बात देखनी है। अनुत्कृष्ट अनुवाग मंद का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि हम देखते हैं भले अनादि से अनुत्कृष्ट क्यों न हो, परंतु उपशम श्रेणी उतरते समय पर्टिकुलर योग में आया, पहले से वो योग था, उस योग के रहते हुए एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हुआ, फिर योग पलट गया, तो योग पलटने की अपेक्षा एक समय घटित होता है। ऐसे भी अनुत्कृष्ट का एक समय दो उत्कृष्ट के बीच में भी होता है, यानी योग पलटने की अपेक्षा एक समय घटित करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी कहीं पर भी एक समय तो घटित होता ही होता है दो उत्कृष्ट के बीच में, और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। यहाँ पर योग का काल लेना अंतर्मुहूर्त। अब का योगी जीव में, जब का योगी कहते तो एक इंद्रियादी सब आ गए, चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल योग के समान है। उत्कृष्ट का काल तो एक और दो समय है, अनुत्कृष्ट का एक समय काल भी हो सकता है, और अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट काल काय योग में रहते हुए अनंत काल एक इंद्रिय में बिताया तो उसने उत्कृष्ट किया ही नहीं, भले बीच में कारवान हो, अवदारिक मिश्र हो, अवदारिक काय योग हो, काय योग ही रहा हो, क्योंकि अगर वो द्विंद्रियादि बनेगा, पंचेंद्रिय में आएगा तो ही वचन योग होगा द्विंद्रियादि में, और संगी में आएगा तो तीन योग हो गए, वहां तो का योग पलटेगा अंतर्मुहूर्त में, पर एक इंद्रिय में रहते हुए सदैव उसका का योग ही है, इसलिए वो अनंत काल वहां घटित हो जाता है अनुत्कृष्ट का। वेदनीय मिला आपको नीचे से पांचवी लाइन, का योगी के मार्गणा है, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओक के समान है, यानी एक समय शपक में, तथा इन सब के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है। अभी अनुत्कृष्ट का यहाँ दो उत्कृष्ट के बीच में नहीं कह सकते, परंतु योग पलटने की अपेक्षा अनुत्कृष्ट का एक समय हो जाता है, मैंने श्रेणी उतरते समय भी एक समय का योग में था तो उसने किया और फिर योग पलट गया। उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात तुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि लगातार अनुत्कृष्ट ही रहा, फिर उसके का योग पलट कर मनोयोग वचन योग होगा इस तरह से, यानी का योग का काल है ये उत्कृष्ट औदारिक का योगी जीवों में, चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ओग के समान है, यानी एक या दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, दो उत्कृष्ट के बीच में भी हो सकता है। उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है, ये औदारिक का योग में रहने का काल, खर पृथ्वी का एक है, पहले औदारिक मिश्र था, फिर औदारिक का योगी हुआ, मरकर अन्य भव में जाएगा तो भी बीच में कारमान का योग या मिश्र योग होगा उसका। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल योग के समान, क्योंकि औदारिक का योग तो श्रेणी में भी है तो उसका एक समय होगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल ज्ञानावरण के समान है, यानी कुछ कम 22,000 वर्ष। कुछ कम क्यों कहा, क्योंकि उसका एक भव 22,000 वर्ष का है, उसमें औदारिक मिश्र का अंतर्मुहूर्त घटाना पड़ेगा, तो उसने अनुत्कृष्ट ही किया लगातार। औदारिक मिश्र का योगी जीवों में या औदारिक मिश्र का काल ही अंतर्मुहूर्त है, सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। क्यों, ये नेक्स्ट समय में पर्याप्ति पूरी करने वाला जीव, उसके संकलेश भी ज्यादा है, विशुद्धि भी ज्यादा है, यानी उसका स्वामी चार घाती का भी वही है और चार तीन अघाती का भी वही है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। समझ में, यहाँ एक समय नहीं लिया क्योंकि उत्कृष्ट अंतिम समय में होता है, तो उसके पहले सारा जो है वो अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा, तो लगातार अनुत्कृष्ट किया उसने। ख्याल में ही बात, अन्यत्र हम अनुत्कृष्ट को एक समय भी कहते हैं क्योंकि दो उत्कृष्ट के बीच में हो सकता है। औदारिक मेषे में उत्कृष्ट कब है? नेक्स्ट समय में शरीर पर्याप्ति पूरी करेगा उस जीव का, तो उसके बाद फिर औदारिक मिश्र भी नहीं रहेगा और अनुत्कृष्ट का प्रसंग भी नहीं आएगा। इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यानी उनका भी स्वामी कौन है, उत्कृष्ट या जगन्य, यानी सॉरी सातों कर्मों के उत्कृष्ट का, कि जो अंतिम समय वाला औदारिक मिश्र का योग, ये मिश्र का योग वाला है जो शरीर पर्याप्ति पूरी करने वाला है नेक्स्ट समय में, परंतु औदारिक मिश्र में सॉरी इतनी विशेषता है कि आहारक मिश्र का योगी जीवों में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है। वायु यहाँ स्वीकार है, महाबंध में स्वीकार है उसको। मैं कहिए पेज नंबर 30 पर है ना, अन्यत्र दो समय तक उत्कृष्ट हो सकता था। अब इसका उत्कृष्ट है ना विशुद्धि अधिक कभी है अंतिम समय में है, तो उसका एक ही समय लेना। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, यानी एक समय बाकी था उसने आयु का बंध शुरू किया, ऐसा भी जीव हो सकता है। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, यानी लगातार वो अंतर्मूर्त का आयु बांधता ही रहा, ऐसा जीव लिया। विशेषार्थ औदारिक मिश्र का योगी जीवों में पर्याप्त होने के एक समय पूर्व उत्कृष्ट अनुभाग बंध संभव है, क्योंकि विशुद्धि भी वहीं ज्यादा होगी, संकलेश भी वहीं ज्यादा होगा। अतः इनमें सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, उसका जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है। यही नियम वैकृत मिश्र का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों के जानना चाहिए। इसलिए इनमें भी सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का काल औदारिक मिश्र का योगी जीवों के समान कहा है, मात्र आहारक मिश्र का योगी जीवों में आयु कर्म के काल में कुछ विशेषता है। बात यह है कि इनमें आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध शरीर पर्याप्ति प्राप्त होने के एक समय पहले संभव है तथा इसी प्रकार शरीर पर्याप्ति के प्राप्त होने के एक समय पहले से आयु बंध भी संभव है। इसलिए इनमें आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कहा है। ये समझ में आई बात? शेष कथन सुगम है। पहले तो सभी मार्गणाओं में आयु के लिए उन्होंने एक विधान किया था कि उत्कृष्ट का एक समय और दो समय है और अनुत्कृष्ट का अंतर्मूर्त है, और यहाँ औदार आहार के मिश्र में कुछ अलग बात होती है, यहाँ एक समय हो जाता। अभी वैकृत का योगी जीव देते, वैकृत का योगी और आहारक का योगी जीव में इसका तो अंतर्मूर्त है काल, आठ कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है, क्योंकि वो तत्प्राय सॉरी सर्वविशुद्ध वाला या सर्व संकलेश वाला ऐसा ले लेना वहां पर। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय दो उत्कृष्ट के बीच में और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त में मनोयोगी वचन योगी हो जाएगी। कार्मण का योगी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि इनमें सात कर्मों में करने वाले कौन जो जीव है, तो कहते पंचेंद्रिय होगी उत्कृष्ट करने वाले, संकलेश में चार घातिका करेगी, विशुद्धि में तीन घातिका करेंगे, तीन आघातिका, तो उसका जघन्य भी उत्कृष्ट भी एक समय बताया। और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल तीन समय है, इसका विशेष अर्थ बताते। कार्मण का योग का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल तीन समय, तीन मोड़े लेने वालों के लिए तीन समय है, और वो सूक्ष्म जीवों में ही पॉसिबल है, एक इंद्रियों में, उसमें भी सात कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध अंतिम समय में होता है, पंचेंद्रिय में दूसरे समय में होगा, क्योंकि चार घाती कर्मों के योग्य उत्कृष्ट संकलेश परिणाम और वेदनीय नाम गोत्र के योग्य उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम वही संभव है। अतः इनके सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, क्योंकि एक समय के लिए कार्मण का योग हो सकता है, उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। शेष कथन सुगम है, अब यही रुकेंगे, क्योंकि यहाँ वेद मार्गना शुरू होगी, पूरी नहीं होगी। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देतो।